Om Narayana 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 Urdhvamoolo Avakshakha Esho Ashvattha Sanatanaha Tadeva Shukram Tad Brahma Tadeva Amritamuchyate Tasmin Lokaha Strita Sarve Tadu Natteti Kashchana। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का पहला श्लोक। कठोपनिषद के इस वल्ली में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया है, जहां हम जीते हैं, जहां हम अनेकों प्रकार के कष्ट, अनेकों प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं, वहां से हमारे मन को अलग करने के लिए और उसका जो मूल आत्मतत्व ब्रह्म तत्व है उसको दिखाने के लिए एक रूपक किया है। वृक्ष का संसार एक वृक्ष है और जो भी वृक्ष होता है वो बीज के बिना नहीं होता है। बीज जब अंकुरित होता है तो उसको भूमि चाहिए। तो सारी चीजें यहां भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में विस्तार से बताए हैं। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि संसार एक वृक्ष है तो अंकुर होगा, तो वो जो अंकुर हैं वो हिरण्यगर्भ है, वो पहला जीव, और इस हिरण्यगर्भ से फिर सारी ये सृष्टि बनी। श्रीमद् भागवत में इसी के विषय में कहा, एतन नानावतारा नाम निधानम बीजमभ्यम, यही सहस्र शीर्खा पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात, जो श्रुति प्रतिपादन करती है वही विष्णु है, वही व्यापक तत्व, वही हिरण्यगर्भ, और वो संपूर्ण अवतारों का मूल है। वहीं से फिर सारी ये दुनिया बनी। दूसरे रूप में अंकुर धीरे धीरे शाखा में बदल जाता है। अंकुर कोई अंकुर नहीं रहता, आपने देखा होगा कोई छोटा सा अंकुर है, वो धीरे धीरे उसकी शाखाएं निकल आती हैं, फिर दिखने भी लगती हैं डालियां। तो यहां डालियों के स्थान में जीवात्माओं का वर्णन है, वो दिखना शुरू हो जाते हैं। अंकुर में डालियां दिखती नहीं है, लेकिन जैसी जैसी डालियां प्रकट होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, मालूम होने लगता है कि ये डालियां हैं, ये शाखाएं हैं। अंकुर एक है लेकिन शाखाएं अनंत हैं। ऐसे मूल जो तत्व हैं, हिरण्यगर्भ एक हैं, लेकिन जीवात्मा अलग हैं, अनेक हैं। ये बहुत सारे जो दिखाई दे रहे हैं हम सभी जीवात्मा के रूप हैं। सूक्ष्म शरीर, अधिष्ठान चैतन्य, और सूक्ष्म शरीर में अधिष्ठान चैतन्य का प्रतिबिंब, इन तीनों के समूह को जीव बोलते हैं। और ये बहुत सारे हैं, अनंत है, जीव अनंत है। और जब शाखाएं होगी तो पत्ते भी होंगे, क्योंकि बिना पत्ते का वृक्ष तो होता ही नहीं है। किसी न किसी रूप में उसके पत्ते होते हैं, तो उसके जो पत्ते उसका वर्णन किया है बड़ा सुंदर, ये श्रुति स्मृति न्याय वेद शास्त्र हैं, यही इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। और ये जो उपमाएं दी हैं बहुत सारगर्भित उपमाएं हैं। पत्ते वृक्ष का जीवन हुआ करते हैं, पत्तों के द्वारा वृक्ष ऑक्सीजन लेते हैं और वो संपूर्ण वृक्ष तक पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग नाक से ऑक्सीजन लेते हैं वैसे वृक्ष पत्तों से ऑक्सीजन लेते हैं। ये जीवन तत्व है। जैसे हमारे जीवन में प्राणों के बिना होना संभव नहीं है, आप प्राणायाम कितना देर तक कर सकते हैं? हम रात भर आंख बंद करके बैठे रहे, दिन भर चाहे तो बैठे रहे, कान बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथ और पैर बांध करके बैठे रहे घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिना बोले मुख बंद करके हम घंटों बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नाक बंद करके यदि बैठना चाहे तो, इसलिए आज तक हमने सारी चीजें बंद कर दी लेकिन एक चीज छोड़ के। आदमी बोलता भी है कि हमने अब मुख बंद कर दिया है, अब हमने कान बंद कर दिए, अब हम नहीं सुनते हैं। लेकिन आज तक अभी तक कभी किसी से आपने सुना कि हमने नाक बंद कर दी? संभव ही नहीं है। क्षण क्षण प्रतिक्षण जीवन तत्व जो इस वायु से मिलता है ऑक्सीजन के रूप में, वो हमारे जीवन का सत्व है। इसलिए प्राण जिसको बोलते हैं, जीव प्राण धारणे धातु से ये जीव शब्द बनता है, जीवन शब्द बनता है प्राण धारणे अर्थ के धातु से। और जीव का ही अर्थ होता है प्राणों को धारण करना। जीव का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी को देख रहे हैं तो जीवन है, ऐसा नहीं है। आप कुछ सुन रहे हैं तो आपके पास जीवन है, आप चल रहे हैं फिर रहे हैं तो जीवन है, और चल फिर नहीं रहे तो जीवन नहीं, ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं तो जीवन है और नहीं देख रहे तो जीवन, ऐसा नहीं है। आप सुन रहे हैं तो जीवन है और नहीं सुन रहे तो जीवन नहीं, ऐसा नहीं है। आप भोजन कर रहे हैं तो जीवन है और भोजन नहीं कर रहे हैं तो जीवन, ऐसा नहीं है। इसलिए वास्तविक जो जीवन का अर्थ है वो देखने छूने बोलने चलने फिरने में नहीं है। वास्तविक जीवन है प्राण धारण। यदि आप प्राणों को धारण कर रहे हैं, श्वास आपकी चल रही है, तो इसका मतलब कि आपका जीवन है। और श्वासोच्छ्वास यदि आपकी नहीं चल रही है, इसका मतलब जीवन नहीं है। इसे सबसे पहले आदमी देख लेता है नाक को हाथ लगा के कि श्वासें चल रही है कि नहीं। ये जीव प्राण धारण है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्राण तत्व, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसी के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। हमारा जोर तो खाने पर है, हमारा जोर तो देखने पर है, हमारा जोर तो केवल सुनने पर छूने पर, यहां तक कि सूंघने पर भी है। बहुत बड़े बड़े आयोजन करके हम सुगंध को सुनना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं। लेकिन जो बहुत मूल्यवान चीज है प्राण तत्व, उस प्राण तत्व को ग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। और करने की जरूरत है सबसे मूल्यवान। इसलिए आपके धर्म में प्राणायाम का बहुत महत्व है। लेकिन हमने प्राणायाम को कर्मकांड मान लिया। कर्मकांड आपने कभी ध्यान दिया होगा, पूजा वूजा में बैठे रहते हैं ना, तो अतः प्राणायाम तो करते हैं कि नहीं आप? आप करते नहीं है, यूं बस हो गया। प्राणायाम के नाम से आदमी नाक में हाथ लगाता है, अब कुछ नहीं करता है। वहां अतः प्राणायाम माने आप विधिवत प्राणायाम कीजिए, दो मिनट लगाइए, थोड़ा शांत से बैठे रहिए, आप पूरा प्राणायाम कीजिए। लेकिन आदमी प्राणायाम नहीं करता है, वो जो पुष्पा भावे तंडुलम समर्पयामी ऐसा बोलते हैं कि नहीं, भाई फूल नहीं है तो आप भगवान को क्या करोगे, चावल चढ़ा दोगे। और वस्त्रा भावे वो भी तंडुलम समर्पयामी, तो आप सबके अभाव में तंडुल को समर्पित कर देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप प्राणायाम तो कर सकते हैं ना। लेकिन वहां पर भी आदमी प्राणायाम नहीं कर पाता है, वो नाक को छू के आगे बढ़ जाता है, वो औपचारिकता, वो एक कर्मकांड का अंग समझकर उसको निपटा देता है, लेकिन वो निपटाने की चीज नहीं है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। व्यास जी महाराज ने कहा कि आप सुखी होना चाहते हैं, आप शांत समाहित होना चाहते हैं, तो आपको दो काम करने चाहिए। बोले बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल दो काम करने की जरूरत है। प्राणायाम परस्य च गीता अध्ययन शीलस्य, आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो और प्राणायाम करो। बोले दो काम करो आप, फिर नैव सन्ति हि पापानि, आपके जीवन में कोई पाप नहीं होंगे, और जो हुए होंगे वो पूर्व जन्म कृतानि च नश्यन्ति, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो आपका प्राणायाम करना कर्मकांड ना हो, वो वास्तविक हो, आप सचमुच बैठ करके प्राणायाम पढ़ो। आपके सारे शास्त्रों में प्राणायाम का बहुत महत्व है, क्योंकि प्राणायाम वास्तविक जीवन है। आप भोजन के बिना जी सकते हैं, हाँ हाँ, बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए तो 9 दिन तक बिना खाए पिए नींबू पानी के ऊपर रहे, 9 दिन तक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैन संप्रदाय में 40-40 दिन तक पानी के ऊपर रहते हैं, उसके बिना भी जीवन संभव है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जिसका संकलन करते हैं अनावश्यक रूप में, उनके बिना भी जीवन संभव है, लेकिन प्राणायाम के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्र ने कहा प्राणायाम करो। जब आप चलते हैं ना, तेजी से आप चलते तो प्राणायाम होता है, अभी श्वास चालू हो जाती है। प्राणायाम का अर्थ केवल नाक दबाने का अर्थ नहीं है, आप जब दौड़ लगाते हैं तो प्राणायाम हो जाता है, आप जब कोई चीज उठाते हैं तो आपका प्राणायाम हो जाता है, आप श्रम करते हैं तो प्राणायाम हो जाता है। इसलिए जो बहुत श्रम करने वाले लोगों के लिए प्राणायाम करने की जरूरत नहीं रह जाती है, लेकिन जो हम लोग श्रम नहीं करते हमारे लिए प्राणायाम की बहुत जरूरत है। ये अक्षय ऊर्जा है प्राण, इसलिए प्राणोपासना हमारे धर्म का बहुत बड़ा ये साधना का अंग है प्राणोपासना। और गीता अध्ययन शील से गीता का अध्ययन करो, प्राण तत्व ये हमारे जीवन का अमूल्य महत्वपूर्ण भाग। ऐसे संसार रूपी वृक्ष का प्राण तत्व किसमें निहित है? बोले वेद शास्त्र, ये पल्लव, ये पत्ते हैं इसके, क्योंकि हमारे संपूर्ण जीवन का जो आधार तत्व है वो विधि और निषेध में। आपने सुना होगा कि आप पुण्य करते हैं तो ऊपर जाते हैं, पाप करते हैं तो नीचे जाते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। देवता लोग बन जाते हैं जो पुण्यात्मा हुआ करते हैं, और जो रजोगुणी है वो बीच में रह जाते हैं, तमोगुणी है वो पापात्मा, वो निम्न योनियों में चले जाते हैं। ये हमारा संपूर्ण जो जीवन है वो पाप और पुण्य इन दोनों का सम्मिलित रूप है। इसलिए पंचदशी का एक बहुत सुंदर श्लोक है, पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदाधिकम। इस सृष्टि में दुनिया में जो भी कुछ बनता है वो जीवात्माओं के कर्मों के कारण, ये जो शरीर हमें मिला वो कर्मों के कारण है। इसको बोलते हैं ना पूर्व, बोलते हैं पूर्व पूर्व, इस शरीर को पूर्व बोला है। केवल मनुष्य के शरीर को ही पूर्व बोला है, पशु के शरीर को पूर्व नहीं बोला है, जान दे ना, वो गांव है, वो गांव है, वो झोपड़पट्टी है, होते ना कि झोपड़पट्टी भी है, गांव है, थोड़ा टाउन है, ओ नगर, ओ महानगर है। अब जब बम्बई का नाम लोग सुनते हैं, बम्बई हो बम्बई, आप किसी को हम बोलते हैं भैया कहां जाए, बम्बई, और बम्बई मतलब उनको ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़े लोक लोकांतर में हम जा रहे हैं, ब्रह्मलोक में है? और लोगों को बोले कहां, प्रेमपुरी में जा रहे हैं, तब तो बातें ही खत्म हो गई फिर, अब अंतिम बोले ये तो अंतिम हो गया, ये तो भारतवर्ष का अंतिम तत्व हो गया, प्रेमपुरी में। मेरे को किसी ने बोला कि अरे आप प्रेमपुरी में बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बोले ऐसा इंदौर में नहीं करते हमको दो दिन पहले किसी ने मैसेज भेजा, अरे बोले प्रेमपुरी के प्रवचन जब हम सुनते हैं तो बोले बहुत गजब के होते हैं, और जब इधर आप बोलते हैं तो बोले बोल नहीं पाते, पता नहीं क्या है। हमने कहा भैया वहां के श्रोता और वहां का जो मंच है वो अद्भुत है। तो पूर्व बोलते आप, उसका कारण है ये महानगर, ये पूर्व पूरयति इति पूरा, ये ऐसे नहीं बोला जाता है, पूर पूर माने नगर, बोलते नगर अग्रे नयति इति, जो आपको जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं जो पूरी कर दे वही पूर है। आप किसी झोपड़पट्टी को पूर नहीं बोल सकते हो, बोले ये तो पूर है, नहीं वो तो झोपड़पट्टी है, वहां तो पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, आपके आगे बढ़ने के सारे मार्ग अवरुद्ध हैं। और पूर्व वो हैं जहां से आप आगे जा सकते हैं। आदमी बोलता है भैया अब हमको आगे बढ़ना है तो चलो पूर्व नगर शहर चलो, आगे बढ़ने के लिए सारी आवश्यकताएं नगर पूरी करता है, शहर पूरी करता है, आप आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ये जो शरीर है ना, ये पूर्व इसीलिए हैं क्योंकि यहां से आगे बढ़ने के सारे मार्ग खुले हुए हैं। आप कहां जाना चाहते हैं, महात्मा लोग बोलते हैं ना कि ये जंक्शन है, जंक्शन का मतलब आपको टिकट, आप जहां जाना चाहते हैं वहां का टिकट यहां मिलता है। आप हरिद्वार जाना चाहते हैं यहां से टिकट मिलेगा, आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो आपको यहां से टिकट मिलेगा, रामेश्वरम यहां से टिकट मिलेगा, ये जंक्शन है। ऐसे आपको कहां जाना है, सुख में बोले इसी शरीर से, दुख में इसी शरीर से, आप सुखी होना चाहते कि दुखी होना चाहते। हम अपने जीवन के 99% दुख अपने इच्छा से निर्मित करते हैं, 99%, 1% जानबूझ के छोड़ रहा हूं मैं, 100% हम हमारे सुख दुख के निर्माता है, हम अपने भाग्य के निर्माता है। हम जो भी कुछ करते हैं वो करना हमारे जीवन में बहुत कुछ निर्मित करता है। अभी आप यहां बैठे हैं, बैठना भी बहुत कुछ निर्मित करता है। आप चल रहे हैं, आपका चलना भी बहुत कुछ निर्मित करता है। आप सो रहे हैं, सोना एक प्रोडक्शन है, आपका नहीं करना भी एक करना है। आप सो रहे हैं तो कुछ बना रहे हैं कि आप नहीं बना रहे हैं, आप डॉक्टर को पूछना हो बोलेगा आप सो, आप अच्छी प्रकार से सो, बच्चों को ज्यादा सोने के लिए डॉक्टर बोलता है, जितना सोएगा उतना विकास होगा, सोने में ज्यादा विकास है। आप सोते हैं तो आपकी शरीर की बहुत सारी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाती हैं। आपका घाव हो तो आप सोते समय घाव जल्दी भरता है, आप सो रहे हैं तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए ना कि कोई चीज ठीक करना चाहते हैं तो आप गैरेज में गाड़ी छोड़ देते हैं और अब चले जाते हैं और वो अकेला आदमी वो ठीक कर देता है। ऐसे आप सो जाते हैं तो प्रकृति शांति में आपके शरीर के सारे पुर्जे वो सब ठीक कर देती है। आपको जल्दी स्वस्थ होना है तो सो जाओ। आपको बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट हैं, वेदनाएं हैं और आपको जल्दी ठीक होना है तो क्या करो, सो जाओ। सो जाओ, इसलिए डॉक्टर आप सो नहीं पाते, डॉक्टर जबरदस्ती आपको सोने की दवा देता है, भैया सोला दो इसको, क्योंकि अभी रिपेयरिंग करना है, इस शरीर की रिपेयरिंग करना है, माइंड की रिपेयरिंग करना है, बॉडी की रिपेयरिंग करना है, तो आपको डॉक्टर बोल दवा दे देता है, भैया सोला दो इसको। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप सो रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप सोते हैं तो भी बहुत कुछ करते हैं। अभी आप बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, आप बैठे हैं तो भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। हम करते हैं तो भी करते हैं, और हम नहीं करते हैं तो भी बहुत कुछ करते हैं, और वो हमारा करना अगले क्षण में, जो हमारे पास शरीर है, हमारे पास मन है, उसमें पहुंच जाता है। आप इस क्षण में 8:01 में जो आप करते हैं वही आपके 8:02 में होता है, उपलब्धि है, या हर क्षण उपलब्धि है, और उपलब्धि अगले क्षण में पहुंच जाती है। आपका जीवन बनता जाता है, आपकी हर क्रियाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। इसलिए हर क्षण हमें ऐसा जीना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए जो हमारा अगला क्षण सुखद हो। हमें पहले क्षण में ऐसा जीना चाहिए जो अगला क्षण सुखद, हम अगले क्षण को तो सुखद बनाना चाहते हैं, लेकिन जो आज का जो क्षण है उसको जीना नहीं चाहते। इसलिए चीजें बनती हैं, वर्तमान में हम बनाते हैं, वही फ्यूचर बनता है, वही हमारा भविष्य बनता है। ये तो सूत्र है जिसको आप पाप पुण्य बोलते हैं, शास्त्र में बताता है ये करो, ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए, शास्त्र ने कहा भैया सीधा बैठना चाहिए, क्यों? बोले रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आपको सोना चाहिए, हमारे शास्त्रों ने कहा आपको बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, क्यों? आप टेढ़ा मेढ़ा बैठोगे तो रीढ़ की हड्डी तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, और लंबे समय तक आप टेढ़ा मेढ़ा बैठोगे तो आप फिर बोलोगे कि भैया वो खसक गई, बोले ना रीढ़ की हड्डी बोली मन का खसक गया, क्यों खसका? वो आज नहीं खसका है, बहुत लंबे समय तक आपने वैसे काम किया है, अब सीधा बैठो। सो तो सीधा, और लोग बड़े बड़े वो सिरहाने ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े सिरहाने लेते हैं, बड़े बड़े सिरहाने, सो। अब एक दिन डॉक्टर बोलेगा कि वो गैप हो गया, सोए टेढ़ा मेढ़ा सोया भैया, सीधा सो, बहुत कम मात्रा में आप सिरहाना लो। इसलिए महात्मा लोग मधुबाबू हाथ का सिरहाना लेते, हमने ऐसे महात्मा, अरे बोले नहीं सिरहाना, अरे भैया अपना हाथ लगाया और वो सो गए। आप करते हैं, आपकी हर क्रिया आपके शरीर को, आपके मन को, आपके बुद्धि को प्रभावित करती है, वो फ्यूचर बनता है। आपका सोना, आप ये मत सोचना कि आपके जीवन को प्रभावित केवल विधि और निषेधात्मक कर्म ही करता है, नहीं, विधि और निषेधात्मक कर्म भी हमारे जीवन का निर्माण करता है, वैसे हमारी प्रत्येक क्रियाएं भी हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, जिसमें कोई विधि और विधान नहीं है। आप यूं बैठे हैं, आप ढंग से बैठे हैं तो वो आपके जीवन का निर्माण करेगी, वो बैठने की क्रिया, और आप टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे तो वो भी आपके जीवन का निर्माण करेगी। जब बिगड़ जाता है तो आदमी देखता है कि हमने ये बिगड़ने वाला काम तो किया नहीं है, ये हुआ कैसे? आदमी सोचता है हमने तो ऐसा कुछ खाया नहीं, गला कैसे खराब हुआ? आप करीब करीब 99% बीमारी के समय यही सोचते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर हम बीमार कैसे पड़े? हमने तो गलत खाया नहीं, हमारा गला कैसे खराब हुआ, सोचते कि नहीं। लेकिन आपको मालूम है आप 10 दिन पहले खाए होंगे, वो इन्फेक्शन आपके पेट में पड़ा रहा और जैसे समय उसने देखा और वो बाहर आ गया, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता है कि हमने 10 दिन पहले वो खाया है। लेकिन वो चीज है, आपके अंदर है, वो पड़ी हुई है और वो जैसे अवसर मिलता है वो सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। इसलिए हमारी प्रत्येक क्रियाएं, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बोलना और बोलने का ढंग भी वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। यही तो प्रारब्ध है जो शास्त्र अनुकूल, शास्त्र प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान हम करते हैं और वो पुण्य बनकर हमारे अगले जीवन का निर्माण करता है। आज जो गलत आचरण करते हैं वो पाप बनकर वो भी अगले जीवन का निर्माण करता है। इसलिए ऑक्सीजन जैसे पत्तों से वृक्ष ऑक्सीजन लेता है और वो संपूर्ण वृक्षों तक पहुंचा देता है, उसका जीवन है, पत्ते वृक्ष का जीवन है। ऐसे हमारे वेद शास्त्र विधि विधान ये संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। ये उपमा बहुत सारगर्भित है। अवाक्शाखः एषु अश्वत्थः सनातन, ये अश्वत्थ और सनातन ये जो संसार रूपी वृक्ष हैं अश्वत्थ नहीं है। ऐसे अश्वत्थ पीपल के पेड़ को बोलते हैं ऊर्ध्वमूलो मदशाख। अश्वत्थ अश्वत्थ माने पीपल के पेड़ का नाम है अश्वत्थ, और ये पीपल के पेड़ का नाम अश्वत्थ है और इसका अर्थ भी बड़ा मजेदार है। अश्वत्थ इसमें 3 शब्द हैं, अ नकारात्मकता है, अ माने नहीं है और श्व माने कल तक, स्थ माने स्थिति, जिसकी कल तक भी जिसकी स्थिति नहीं है। हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि इन संसार के पदार्थों का अस्तित्व कल तक रहेगा, हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये चीज कल तक रहेगी, कौन कह सकता। अश्व था अ माने नहीं है, स्व माने स्थिति, स्व माने कल तक और स्थ माने स्थिति, जिसकी वो अश्वत्थ ये संसार, ये अश्वत्थ इस वृक्ष का नाम है और इसका स्वभाव है। आपके महाभारत में एक बहुत सुंदर दृष्टांत आया है। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत बड़े बड़े लोगों को जो बात समझ में नहीं आती, कई बार छोटे लोगों को समझ में आ जाती है। एक कोई दान मांगने के लिए ब्राह्मण आया महाराजा युधिष्ठिर जी के पास। संध्या का समय था, कोष के द्वार बंद थे, आलस कर गए होंगे। कई बार आलस हो जाता है, कल दे देंगे कल दे देंगे, और उन्होंने भी यही बोला, बहुत उदार हैं, बहुत दानी हैं, लेकिन उन्होंने भी बोल दिया कि भैया कल आओ, सुबह 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 का समय दान के लिए अच्छा होता है। आदमी सोचता है कि चलो कल दे देंगे यार क्या है। और वो ब्राह्मण तो चला गया और सोने के लिए चले गए शयन कक्ष में युधिष्ठिर जी महाराज, और वहां पर एक ढोल था, राज परिवार का ढोल था। वो कोई अद्भुत चीज जब घटती तो नियम था कि कोई अद्भुत घटना घटी राज परिवार में, आनंद की कोई घटना, तो वो ढोल बजाया जाता था। चल पड़े भीम और जाके बहुत जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। सारे लोग एकत्रित हो गए, बोले क्या बात क्या है, कौन सी खुशी की खबरी है। युधिष्ठिर जी महाराज जी भी बाहर आ गए शयन कक्ष से और वो भीम तो बजाए जा रहे थे, वो जब तक युधिष्ठिर जी महाराज नहीं आए तब तक वो बजाते रहे वो। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि कहो भीम बात क्या है, बोले कौन सी खुशखबरी तुमको मिली जो तुम ये ढोल बजा रहे हो। भीम ने कहा कि भैया इससे बड़ी कौन सी खुशखबरी हो सकती है कि हमारे सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज जी को भरोसा हुआ कि कल तक वे जीवित रहेंगे। बोले हमारे लिए कितनी खुशखबरी है कि आप कल तक जीवित रहेंगे, ये निश्चित हो गया क्योंकि आप कल दान देने वाले हैं, जीवित रहेंगे तभी तो मैं पानी पानी हो गए युधिष्ठिर जी महाराज। ओहो बात तो सही बोल रहे, वो सोचने लगे क्या मैं कल तक जीवित रहूंगा। अच्छा मान लो मैं जीवित रह भी गया तो क्या वो लेने वाला दान क्या वो जीवित रहेगा, भरोसा है, या दोनों जीवित रहेंगे, या दोनों जीवित रहने के बाद भी देने के लिए धन रहेगा, क्या भरोसा है। पहले भी तो धन गया था, राज्य भी गया था पहले भी, क्या क्या पता, और क्या पता वो लेने वाले का मनोगत ना हो। कल ब्राह्मण बोल दे कि भैया मेरे को कहीं और से धन मिल गया, अब मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब आपसे मैं ले नहीं सकता हूं, तो कुछ भी संभव है, संभावनाएं बहुत कुछ, ये जीवन तो बहुत परिवर्तनशील है, बहुत परिवर्तनशील है। हमारे आदरणीय मदन मोहन डालमिया जी पिछले वर्ष थे जब मैं यहां आया था तब थे, आत्मिक रूप से आज भी हैं, लेकिन हम शारीरिक रूप से उनकी उपस्थिति महसूस नहीं करते। यहां संसार की बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं, जीवन की बदल जाती हैं, मनोवृत्तियों में बदलाव आ जाते हैं। समझ गए सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज, और कहते उसी समय उन्होंने बुलाया ब्राह्मण को, बुलाया वो ज्यादा दूर नहीं गया था, ढोल सुन के वापस आ गया होगा। भाई वो भी देखना चाहता होगा कि ढोल क्यों बज रहा है, उनको क्या मालूम ये भीम क्या कहना चाहते हैं। द्वार खोल दिए गए कोष के, और एथेच युधिष्ठिर जी महाराज ने उस ब्राह्मण को दान दिया। मेरे को लगता है कि दोबारा कभी उन्होंने कल पर नहीं ताला होगा फिर वो। क्या भरोसा, और आपका संपूर्ण जो अध्यात्म है ना इसी समझ पर आधारित है, ये समझ है, ये बहुत बड़ा विवेक है, ये बहुत बड़ा सत्य का निर्णय है। ये जो संसार है वो अश्वत्थ है, आपके दुखालयम अशाश्वतम, जितने भी शास्त्र हैं आप पुराणों को देखो, स्मृतियों को देखो, श्रुतियों को देखो, हर जगह पर एक बात आपको सुनाई जाती है, यहां कुछ भी सत्य नहीं है। ये आपको हताश निराश होने के लिए नहीं, यहां कुछ भी सत्य नहीं है ये सोचकर आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आया है ओहो यहां कुछ भी सत्य नहीं है, सिर में हाथ लगा के वो उसके लिए नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति को जगाने के लिए, ये समझ की शक्ति। हमारे अंदर जो शक्ति है ना ये बाहर की शक्ति नहीं, ये आत्मिक अंदर से जो शक्ति है उसको निर्मित करने के लिए समझ की शक्ति। हमारे जीवन में सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो ज्ञान की शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की शक्ति है। समझ ही तो है, आप समझते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं पुरानी बात, रात में कहीं गया था मैं, शाम को 4 बजे बैठे थे तो हम लोग सत्संग कर रहे थे तो किसी ने मेरे को बहुत पुरानी बात याद दिला दी। बोले महाराज आप एक बिच्छू काटने वाली घटना सुना रहे थे वो सुनाओ, तो हमने सुना दिया, आप लोगों को सुना देते हैं। एक बार मैं गुफा में रहता था मधु बाबू, दो गुफाएं थी, दो साधु थे हम लोग, कैलाश आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे दिव्यानंद जी महाराज के पास, बहुत सुंदर गुफा थी, और ऋषिकेश से 2-3 किलोमीटर ऊपर बहुत कठिन जगह थी, वहां एक स्मशान भी था। रात्रि का समय वो महात्मा जी नहीं थे, बाल्टी लेके पानी लेने के लिए गंगा जी उतरा मैं, मेरे पैर में बिच्छी काटी। अरे बहुत बड़ी बिच्छी थी वो, और बिच्छी इतनी बड़ी थी कि डंक मारा वहां खून निकल आया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अब यहां जंगल में क्या दवा है क्या है, चलो अब हम इसको वेदांत की साधना में ले जाएंगे, अब इसकी दवा करेंगे हम। कौन सी दवा? वेदांत की दवा। फिर गुफा में जाके लेट गया, और लेट करके फिर मैं सोचने लगा कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। और सचमुच मैं अनुभव कर रहा था कि शरीर से मैं अलग हूं, मैं दृष्टा हूं, साक्षी, और मैं देख रहा हूं कि इस पैर में बिच्छी काटी है और बहुत दर्द हो रहा है, ये भी मैं देख रहा हूं। लेकिन किसको दर्द हो रहा है? पैर में बिच्छी किसको काटी? पर मेरे को नहीं काटी, ये पैर को काटनी है। और इतना दर्द था गिरीश, हे राम, मेरे को ऐसा लगता था कि इस पैर में बारूद भर के उड़ा दिया हो, और उसी नशे वैसे उड़ती जा रही, फटती जा रही, ऐसा लगता पैर जो है ना वो फटता जा रहा। लेकिन मैं बस दृष्टा था, मैं केवल देखने वाला था, साक्षी। ये शरीर है, शरीर का दर्द है, बिच्छी का काटना है, उसकी संवेदनाएं हैं। ये जो बौद्धों में जो विपश्यना है ना, ये अपने वेदांत की साधना है। बौद्धों की जो विपश्यना है वो वेदांत की साधना है, लेकिन वो आत्मा तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो आत्मा तक नहीं पहुंचा पाते, वो शून्य में ले जाते हैं। लेकिन जहां तक वो विपश्यना की साधना है, वो वेदांत की साधना है। देखो, वो देखने वाला अलग है और ये दृश्य अलग है, ये समझ, ये ज्ञानी तो है। आपने एक बार समझा कि ये चीज मेरे से अलग है, और उसके बाद फिर रात में 12 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तो वैसे ही पड़ा रहा मैं, वो मेरे शरीर में कोई क्रिया ही नहीं थी, उठ ही नहीं रहता शरीर, वो भयंकर बिच्छी थी वो। और मैंने बाद में सुना कि वो बिच्छी जब काटते हैं तो आदमी मर जाता है, बिच्छी काटने से मरता है वो, जंगली बिच्छी, भयंकर, वो बहुत दुर्लभ किस्म की होती है, और उसने काट, लेकिन वो भगवान की कृपा, वो आत्मबल और वो साधना, वो बस बच गया मैं। फिर दूसरे दिन एक महात्मा जी आए, उन्होंने देखा मैं लेटा हूं, बोले क्या हुआ? मैंने इशारा किया, वो समझ गए मैं भजन कर रहा हूं। और जब 11 बजे भोजन आया और बैठ गए, और मैंने दिखाया जहां बिच्छी काटी थी वहां जले हुए की तरफ फोड़ा निकल आया था। ये समझ है कि आपको समझना है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सत्य का बोध होना चाहिए। ये शरीर जो है ये परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील होता है उसको आप क्या करते हैं? परम पूज्य महाराज श्री ने बहुत सुंदर बात बोली, हमारे जीवन में तीन चीजें होती हैं, एक गुण बुद्धि, एक दोष बुद्धि, और तीसरी मिथ्यात्व की बुद्धि। जहां गुणबुद्धि होती है वहां प्रवृत्ति होती है। आपको बहुत कोई अच्छी चीज मालूम पड़ी, सुनने में, देखने में, छूने में, खाने में, सूंघने में, तो आपकी प्रवृत्ति होती है। बहुत अच्छी चीज लगी, बहुत अच्छा आदमी मालूम पड़ा, बहुत अच्छा सुनने को भी मिला, तो आदमी की प्रवृत्ति होती है। और दोष बुद्धि निवृत्ति के प्रतिकारण बने, आपको मालूम पड़ा रे ठीक नहीं है, तो आपकी निवृत्ति हो जाती है। आपको खाने में अच्छा नहीं लगा तो आपकी निवृत्ति होना शुरू हो जाती है, देखने में अच्छा नहीं तो आपकी निवृत्ति होना शुरू हो जाती है, आप लौटना शुरू कर जाते हैं। लेकिन जो मिथ्यात्व की बुद्धि है ना, वो न गुण बुद्धि है और न वो दोष बुद्धि है। जैसे आप बहुत आकर्षित हो गए, कोई चीज आपको चमकती हुई दिखाई दी, आप अकेले हैं, रास्ते से जा रहे हैं, और वो बहुत चमकती हुई चीज मालूम पड़ी, आपके मन में भाव जगा कि ये तो स्वर्ण है, क्या करेंगे आप? ईमानदारी से आप क्या करोगे? उठा लेंगे ना? हाँ हाँ उठा लेंगे। لیکن جب وہاں اٹھایا آپ نے اور اٹھاتے آپ کو معلوم پڑا کہ یہ تو ارے تو ایسے چمک رہا تھا. ایسا ہوتا ہے ندی کے کنارے میں, آپ کبھی گئے ہوں گے ندی کے کنارے میں, سینٹ بہت چمکتی اور ایسی چمکتی سا کہ ہیرا ہو, اور وہاں جاؤ تو سر یہ تو کچھ بھی نہیں. آپ کو معلوم پڑا کہ وہ چاندی ہے, آپ کو معلوم پڑا کہ سونا ہے, آپ کو معلوم پڑا یہ ہیرا ہے, بہت مولیوان چیز ہے, اور ہاتھ میں لینے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بھرم تھا. اب آپ وہاں کیا کرو گے؟ آپ وہاں پر نہ پرورتی ہوگی اور نہ آپ کی نیورتی ہوگی, نہ اب آپ وہاں سے بھاگو گے اور نہ وہاں پر آپ چپکو گے, نہ پرورتی نہ نیورتی. یہ متھیاتو بودھ ہے. صاف معلوم پڑا آپ ڈر گئے, لیکن آپ کو بودھ ہوا, ادھشٹھان کا بودھ ہوا, آپ نے چھوا, جا کے دیکھا, ٹارچ لگائی اور جانے کے بعد معلوم پڑا ارے یہ تو رسی ہیں, معلوم پڑا ارے یہ تو پائپ ہیں, معلوم پڑا. اب اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ نہ پرورتی نہ نیورتی. جب ادھشٹھان کا بودھ ہو جاتا ہے اور بھرم کی نیورتی ہو جاتی ہے تو وہاں نہ پرورتی ہوتی ہیں اور نہ نیورتی, آدمی تٹستھ ہو جاتا ہے. پھر وہاں نہ بھاگنا ہے اور نہ وہاں پکڑنا ہے, نہ وہاں سے بھاگتا ہے اور نہ وہاں سانپ کو اٹھا کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو معلوم ہے یہ تو سانپ ہے ہی نہیں. اس لیے یہ ہے متھیاتو بودھ. گن بدھی پروتی کے پرتی کارن ہے, دوش بدھی نیورتی کے پرتی کارن ہے, اور متھیاتو بدھی میں نہ پروتی ہے اور نہ نیورتی. اس لیے گن بدھی آسکتی کو نرمت کرتی ہے, دوش بدھی ویراگیہ کو نرمت کرتی ہے, اور متھیاتو بدھی آپ کو تٹست بنا دیتی ہے. آپ کو متھیاتو بودھ ہوا, آپ کیا کرو گے؟ آپ کو متھیاتو کا گیان ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ ارے ہم نے تو چھوڑ دیا, ہے نا. पत्नी को बोध हो गया, वेदांत का श्रवण करते करते बोध हो गया पत्नी को कि पति मिथ्या है, तो फिर क्या किया आपने? अरे हमने छोड़ दिया. क्यों छोड़ा? अरे बोलो मिथ्या था. और पति को बोध हुआ कि पत्नी मिथ्या है, और पति ने अपने पत्नी को छोड़ दिया. बोले क्यों छोड़ा? अरे बोले वो मिथ्या है, मिथ्या है. تو یہ متھیا ہوا کہ نہیں؟ جب آپ نے اپنے پتنی کو متھیا سمجھ کر پتنی کو چھوڑا, اس کا مطلب کہ آپ ستیہ سمجھ رہے اپنے آپ کو, آپ اپنے آپ کو ستیہ سمجھ رہے ہیں نا. یہ پتی بھاؤ کو ستیہ سمجھا اور پتنی کو متھیا سمجھا, اس لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم نے اس کو چھوڑا, اس کو اس کو پکڑ رکھتا ہے نا, اس لیے نہیں. دونوں متھیا ہے, ہاں دونوں متھیا ہے, پتی بھی اور پتنی بھی. اجب آپ کو متھیا بودھ ہو گیا تو کیا کرو گے آپ؟ اس کو چھوڑ کے بھاگو گے کہ اس کو پکڑو گے؟ ارے متھیا کا ارتھ یہ پرورتی اور نیورتی میں نہیں ہے. متھیاتو کا ارتھ ہے آپ جہاں ہیں وہیں ہیں. آپ نے کیول سمجھ لیا, یہ درشٹی کا پریورتن ہے, سرشٹی کا پریورتن نہیں ہے. ویدانت درشٹی کا پریورتن ہے, سرشٹی کا پریورتن نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تو صاحب نے, اب کیا کرو گے؟ بھاگو گے؟ آپ کو معلوم پڑ گیا نا, یہ تو معلوم پڑ گیا, یہ تو شریر اور یہ ساری جو دنیا دکھائی دے رہی ہے تو سوپن ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اپنی جان لی, اب کیا کرو گے؟ اب گھر چھوڑ کے ہریدوار چاہو گے؟ نہیں کیا ہے, جب آپ کو معلوم پڑ گیا کہ یہ سوپن ہے تو کہاں جانا ہے, کہاں آنا ہے, کس کو گران کرنا ہے, کس کو تیاگ کرنا. ابھی شیش ہے نا, جب سب کچھ متھیا آپ کو معلوم پڑا, سوپن کی طرح معلوم پڑا, تو نہ آپ کے جیون میں پرورتی گھٹے گی اور آپ کے جیون میں نہ निवृत्ति घटेगी, न आप आगे बढ़ोगे पकड़ने के लिए और न वहां से भागोगे। तटस्थ साक्षी भाव तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, राजा जनक को मालूम पड़ा ये संसार मिथ्या है, फिर राजा बनेगी नहीं। सुखदेव जी महाराज को मालूम था ये सारा जो संसार है वो मृग मरीचिका की तरह है, मालूम था, स्वप्न की तरह मालूम था। उसके बाद भागवती कथा की कि नहीं, वे राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई कि नहीं, एक एक श्लोक सुनाया। उस समय राजा परीक्षित को ये नहीं बोला सुखदेव जी महाराज ने कि तुम मिथ्या और मैं भी मिथ्या। भाई जो वो शरीर राजा जनक, राजा परीक्षित का शरीर, वो आसन, बहुत सारे बैठे हुए लोग और वो सुखदेव जी महाराज, दोनों भी स्वप्न है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने ये नहीं बोला कि ये सब कुछ मिथ्या है, क्या भागवती कथा करना है, छोड़ो। नहीं, भागवती कथा भी की। अब मान लो कि आपको ब्रह्मज्ञान हो गया और डॉक्टर ने बोला आपको दवा खाना है, आप क्या बोलोगे? नहीं, आप ये बोलोगे कि अरे मिथ्या है, क्या दवा खाना है? फिर दवा खाने में काय को गए? फिर दवा खाने का ही मतलब होता है जहां दवा खाना पड़ता है। आप दवा खाना क्यों बोलते हैं? जहां दवा खानी पड़ती है, आप दवा को खाने के लिए जाते हैं, इसलिए तो उसको दवा खाना बोलते हैं। और डॉक्टर ने बोला दवा खाओ और आप बोल रहे कि नहीं ये तो शरीर मिथ्या है, ब्रह्म ज्ञान हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपके अस्तित्व में परिवर्तन नहीं है, आपके दृष्टि में परिवर्तन है। शंकराचार्य को बोध हुआ तो शंकराचार्य ने बोध काल में उपदेश किया कि नहीं? पूरे भारतवर्ष की चार परिक्रमाएं की, अनेकों शास्त्रों का निर्माण किया, प्रस्थान त्रय पर भाष्य का निर्माण किया, वैदिक सनातन संस्कृति के बहुत शक्तिशाली बनाया। और उसके बाद भी वो समझते थे ये सब मिथ्या, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसलिए अध्यात्म, इसलिए वेदांत, ये सृष्टि का परिवर्तन नहीं, ये दृष्टि का परिवर्तन है। और एक बार आपको मालूम हो जाए, आपको मालूम हो जाए, फिर उसके बाद आपके अंदर आग्रह नहीं होगा, आपके अंदर प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। आप ध्यान दें, आपके अंदर प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी, आपके अंदर राग द्वेष नहीं होंगे। सत्य के प्रति राग होता है हमेशा, सत्य के प्रति राग होता है, असत्य के प्रति द्वेष होता है। ये रागम लिंगम, ये राग जो है लिंग है, लिंग लिंग का मतलब चिन्ह है, पहचान है। आपके अंदर राग है ना, राग है, द्वेष है, इसका मतलब कि अभी मिथ्यात्व बोध नहीं है। अवशेष है ना, संसार के प्रति मिथ्यात्व बोध हुआ। भैया ये सब अच्छा, ये दो ही उपाय है, राग द्वेष छोड़ने के दो ही उपाय, या तो आप इसको मिथ्या समझो या तो तत्वरूप समझो। आप समझते हैं ये सारी चीजें जो जितनी चीजें दिखाई दे रहे सब भगवान का रूप है। आपने समझ लिया? क्या समझा? मया ततमिदम सर्वम जगदप व्यक्त मूर्तिना। भगवान ने कहा कि सारी जो दुनिया है ये मेरे द्वारा व्याप्त है, विश्व रूप दर्शन हुआ आपको। आप शास्त्र पर भरोसा करते हैं, आप गीता जी पर भरोसा करते हैं, अपने साधु महात्माओं पर भरोसा करते हैं, सब लोग आपको यही बोल रहे, शिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, मया ततमिदम सर्वम, ईशावास्यमिदम सर्वम। ये सब कुछ भगवान का रूप है, आपने जान लिया, भरोसा किया। देखने की जरूरत नहीं है, ये केवल भरोसे की चीज है। आप देखने के बाद मानोगे तो भरोसे का मतलब क्या रहा? आप सोचते होंगे कि हम अनुभव कर लेंगे उसके बाद मान लेंगे, फिर आपके विश्वास का अर्थ क्या है? आप बहुत ज्यादा श्रद्धावान हैं, उसका अर्थ क्या, प्रयोजन क्या है? आप सोचते होंगे हमको अनुभव होने के बाद मान लेंगे, फिर श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब यही है कि आपको दिखाई न दे और उस अस्तित्व को स्वीकार कर ले। آپ نے سنا سیاہ رام امیا سب جگ جانی سن لیا ہاتھ جوڑیں جی پربھو آدیش مان لیا سب کچھ سمجھ رہے ہو آپ نے بولا ہم سمجھ گئے کہ یہ سب سیاہ رام میں آدیش ملا یہ سب کچھ اب آپ سمجھ گئے شردھا کی درشٹی سے وہ تو انبھو تو بعد میں ہوتا رہے گا پہلے شردھا کے آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے سادھنا اور سادھک کا ارتھ یہی ہے پہلے شردھا کے آنکھ سے مان لو گہرے سے گہرے مان لو بھلے ہمیں دکھائی نہ دے لیکن مان لیے ہم نے ہمیں شاستروں نے بتا دیا ہمارے گروہوں نے بتا دیا سنتوں نے بتا دیا یہ سب بھگوان کا روپ ہے مان لیا ہم نے اور ایک بار مان لیا تو ماننا ایک کرانتی ہے ماننا ایک جیون کا بہت بڑا بدلاؤ ہے ماننے کے ساتھ ہمارا جیون ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک بار آپ مان لو بس بولتے ہیں ارو ہم نے مان لیا ماننے کے بعد ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ مانیتا کوئی سامانیہ چیز نہیں شردھا ہمیں مانیتا میں لے جاتی ہے اور وہ مانیتا ہمیں ہونے میں لے جاتا ہم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ جیون کی بہت بڑی کرانتی ہے اور آپ نے مان لیا کہ سب کچھ بھگوان کا روپ ہے اب آپ راگ کہاں کرو گے آپ دویش کہاں کرو گے آپ بولے بھیا یہ تو سب بھگوان کا روپ ہے آپ کو ساری چیزیں دکھائے معلوم پڑے گا او سب ٹھیک ہے آپ کے ویوہار میں بدلاؤ نہیں آئے گا دھیان دینا آپ کھاؤ گے سب کچھ کرو آپ کے اندر گھرنا نہیں رہے گی آپ کے اندر سمتو ہوگا آپ کے اندر ایک اہو بھاؤ ہوگا آپ کے اندر دیا ہوگی آپ کے اندر کرونا ہوگی آپ کے اندر ایک دیویتا کا آنا شروع ہو جائے ایک بار معلوم پڑ جائے کہ ساری چیزیں بھگوان اچھا بھگوان کے مندر میں آپ جاتے ہیں تو کچھ الگ جاتے ہیں کتنا آشچر ہے آپ جب بھوجنالے میں جاتے اور ویسے آپ بھجنالے میں نہیں جاتے آپ جب مندر میں پرویش کرتے ہیں تو آپ کی بھاونائیں کچھ بدل جاتی ہیں اپنے آپ بدل جاتی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز دے دوں اور سامنے والا بولتا ہے نہیں 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 اور میں بولوں پرساد اور جسے پرساد بولتے ہیں بات کیا ہے ارے ابھی بول رہے تھے ہم کو نہیں لینا ہے ہاں جیسے ہم بولتے پرساد اور پرساد بولتے جو نئی کھانے والی چیز بھی انکار نہیں کر پا وہ بولتا ٹھیک ہے بھاؤ بدل گیا بھاؤ مانیتا میں بدل گیا اور وہ مانیتا جیون میں بدلاؤ کے پرتی کارن بن گیا اب بدل گیا یہ بہت بڑی چیز ہے ایک بار آپ جان لیں یہ ساری چیزیں یہی تو بولنا چاہتے اتکرمن کبھی بھی کاریہ کارن کا اتکرمن نہیں کرتا ہے کبھی بھی کاریہ کارن کا اتکرمن نہیں کرتا ہے اس کو بہت سرل شبدوں میں یدی کہا جائے کبھی بھی کاریہ کارن کو چھوڑ کے نہیں رہتا ہے کاریہ کو چھوڑ کے کارن رہ جاتا ہے کاریہ کو چھوڑ کر کے کارن رہ جاتا ہے لیکن کارن کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتا ہے سونے کو چھوڑ کر النکار نہیں رہ سکتے لیکن النکاروں کو چھوڑ کر سونا رہ سکتا ساری چیزیں جتنی دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں یہ کارن کے بنا مانے کارن پرماتما اس کے بنا نہیں ہے سب کے اندر کارن انوگت ہیں اور ایک بار معلوم پڑا یہ ساری چیزیں بھگوان کا روپ ہیں یہ کرانتی ہیں جیون میں کرانتی ہیں بدلاؤ ہیں ساری چیزیں بدل جاتی ہیں سمجھ کے ساتھ بدل جاتی ہیں یہ معلوم پڑا یہ ساری چیزیں پریورتنشیل ہیں معلوم پڑا یہ ساری چیزیں سوپنوت بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے پھر بہت بڑا بدل ویراگیہ پورن ویراگیہ یہ جانوتر ویراگیہ بولتے ہیں بڑا سندر وشے ہیں سمے ہوا اوم نارائن